AQA General Certificate of Secondary Education. June 2016. Urdu Listening Test. Higher Tier. This is what you should do for each item. After the question number is announced, there will be a pause to allow you to read the instructions and questions. Listen carefully to the recording and read the questions again. Listen to the recording again and then answer the questions. When the next question is about to start, you will hear a bleep like this. You may write at any time during the test. Answer all questions in English. You must answer the questions in the spaces provided. Do not write outside the box around each page or on blank pages. Write neatly and put down all the information you are asked to give. Ask any questions now. You must not ask questions or interrupt during the test. You now have 5 minutes to read through the question paper. You may make notes during this time. You may open your answer book now. The test starts now. Example.
मेरा नाम इमराना है और मैं पाकिस्तान के एक शिमाली इलाके में रहती हूँ. मेरा कस्बा घूमने फिरने के लिए बहुत मशहूर है.
Example.
मेरा नाम इमराना है और मैं पाकिस्तान के एक शिमाली इलाके में रहती हूँ. मेरा कस्बा घूमने फिरने के लिए बहुत मशहूर है.
नंबर वन.
यहाँ पर एक बहुत अच्छा पार्क मौजूद है जहाँ हम फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन कभी कभी यहाँ खेलना खतरनाक भी हो सकता है. यहाँ का बाजार नया है और इसमें बहुत सी सहूलतें हैं, लेकिन यहाँ के रेलवे स्टेशन की इमारत बहुत पुरानी और खराब हालत में है. मेरा घर थोड़ा छोटा है और मुझे ये बात पसंद नहीं है क्योंकि मेरी बहन भी मेरे साथ मेरे कमरे में रहती है. यहाँ घूमने फिरने के लिए आने वाले लोग बहुत अच्छे होते हैं. इनके लिए यहाँ पर बहुत कुछ देखने और करने के लिए है.
Number one.
यहाँ पर एक बहुत अच्छा पार्क मौजूद है जहाँ हम फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन कभी कभी यहाँ खेलना खतरनाक भी हो सकता है. यहाँ का बाजार नया है और इसमें बहुत सी सहूलतें हैं, लेकिन यहाँ के रेलवे स्टेशन की इमारत बहुत पुरानी और खराब हालत में है. मेरा घर थोड़ा छोटा है और मुझे ये बात पसंद नहीं है क्योंकि मेरी बहन भी मेरे साथ मेरे कमरे में रहती है. यहाँ घूमने फिरने के लिए आने वाले लोग बहुत अच्छे होते हैं. इनके लिए यहाँ पर बहुत कुछ देखने और करने के लिए है.
Number two.
मैं गर्मियों में दरवाजे, खिड़कियां और पर्दे बंद रखता हूं, जिसकी वजह से कमरा ठंडा रहता है और बिजली इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती.
Number two.
मैं गर्मियों में दरवाजे, खिड़कियां और पर्दे बंद रखता हूं, जिसकी वजह से कमरा ठंडा रहता है और बिजली इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती.
Number 3.
हमारे स्कूल में कागज फेंकने के लिए अलग डब्बे होते हैं। तालिबे इल्म हर किस्म के इस्तेमाल किए हुए कागज इन डब्बों में फेंकते हैं।
Number 3.
हमारे स्कूल में कागज फेंकने के लिए अलग डब्बे होते हैं। तालिबे इल्म हर किस्म के इस्तेमाल किए हुए कागज इन डब्बों में फेंकते हैं।
Number 4.
स्कूल में कुछ लड़कियों ने मुझे मुख्तलिफ नामों से पुकार कर तंग करना शुरू कर दिया। उन्होंने मेरा इतना मजाक उड़ाया कि मेरा स्कूल जाना बहुत मुश्किल हो गया। अम्मी से बात करने के बाद मैंने उन लोगों से मुकाबला करने का फैसला किया। मुझ में इतना हौसला पैदा हो गया कि मैंने उन लड़कियों की तरफ बिल्कुल तवज्जो देना छोड़ दी और अपने काम से काम रखा। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मेरा पीछा छोड़ दिया।
Number 4.
स्कूल में कुछ लड़कियों ने मुझे मुख्तलिफ नामों से पुकार कर तंग करना शुरू कर दिया। उन्होंने मेरा इतना मजाक उड़ाया कि मेरा स्कूल जाना बहुत मुश्किल हो गया। अम्मी से बात करने के बाद मैंने उन लोगों से मुकाबला करने का फैसला किया। मुझ में इतना हौसला पैदा हो गया कि मैंने उन लड़कियों की तरफ बिल्कुल तवज्जो देना छोड़ दी और अपने काम से काम रखा। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मेरा पीछा छोड़ दिया।
Number 5.
स्कूल में अक्सर असातजा से मेरी बिल्कुल नहीं बनती, इसलिए मैं स्कूल से ज्यादातर गैर हाजिर रहता हूं और मुझे सजा के तौर पर स्कूल के बाद ठहरना पड़ता है। मेरी अम्मी की राय में यह बहुत गलत है। वो कहती हैं कि अगर मेरा स्कूल से गैर हाजिरी का यही हाल रहा तो मेरे इम्तिहान के नताइज खराब आएंगे, मगर मुझे अम्मी की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं है। वैसे तो मैं काफी ज़हीन हूं, लेकिन मेरा मसला ये है कि स्कूल में मेरा दिल बिल्कुल नहीं लगता है।
Number 5.
स्कूल में अक्सर असातजा से मेरी बिल्कुल नहीं बनती, इसलिए मैं स्कूल से ज्यादातर गैर हाजिर रहता हूं। और मुझे सजा के तौर पर स्कूल के बाद ठहरना पड़ता है। मेरी अम्मी की राय में यह बहुत गलत है। वो कहती हैं कि अगर मेरा स्कूल से गैरहाजिरी का यही हाल रहा तो मेरे इम्तिहान के नतायज खराब आएंगे। मगर मुझे अम्मी की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं है। वैसे तो मैं काफ़ी ज़हीन हूँ, लेकिन मेरा मसला ये है कि स्कूल में मेरा दिल बिल्कुल नहीं लगता है।
Number 6.
मैं कूड़ा करकट, रद्दी कागज और शीशे की चीजों के लिए अलग अलग डब्बे इस्तेमाल करता हूँ। काउंसिल वाले इनमें से ये चीजें ले जाते हैं ताकि उनको दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सके।
Number 6.
मैं कूड़ा करकट, रद्दी कागज और शीशे की चीजों के लिए अलग अलग डब्बे इस्तेमाल करता हूँ। काउंसिल वाले इनमें से ये चीजें ले जाते हैं ताकि उनको दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सके।
Number 7.
हम खरीदारी के लिए ज्यादातर पैदल जाते हैं। मैं स्कूल भी पैदल जाना पसंद करती हूँ क्योंकि ये जहाँ माहौल के लिए अच्छा है वहाँ मेरी सेहत के लिए भी मुफीद है।
Number 7.
हम खरीदारी के लिए ज्यादातर पैदल जाते हैं। मैं स्कूल भी पैदल जाना पसंद करती हूँ क्योंकि ये जहाँ माहौल के लिए अच्छा है वहाँ मेरी सेहत के लिए भी मुफीद है।
Number 8. A.
चार साल पहले मैंने अपने बेटे की जिद पर दो खरगोश खरीदे। कुछ अरसा बाद जब उसने इनके साथ खेलना छोड़ दिया तो मैंने इंटरनेट के जरिए इनको फरोख्त कर दिया। काफी लोगों ने इनको खरीदने में दिलचस्पी जाहिर की और इनके बारे में बहुत से सवालात किए और उन्होंने मेरा काफी वक्त जाय किया।
नंबर 8 ए।
चार साल पहले मैंने अपने बेटे की जिद पर दो खरगोश खरीदे। कुछ अरसा बाद जब उसने इनके साथ खेलना छोड़ दिया तो मैंने इंटरनेट के जरिए इनको फरोख्त कर दिया। काफी लोगों ने इनको खरीदने में दिलचस्पी जाहिर की और इनके बारे में बहुत से सवालात किए और उन्होंने मेरा काफी वक्त जाय किया।
नंबर 8 बी।
मैं इंटरनेट के जरिए दूसरे मुल्कों में अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से राब्ते में रहती हूँ और हम पहले की निस्बत बेहतर और तेज़ी से एक दूसरे के हालात से बाखबर रहते हैं। इसके अलावा जब हम एक दूसरे से बातें करते हैं तो एक दूसरे को देख भी सकते हैं।
नंबर 8 बी।
मैं इंटरनेट के जरिए दूसरे मुल्कों में अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से राब्ते में रहती हूँ और हम पहले की निस्बत बेहतर और तेज़ी से एक दूसरे के हालात से बाखबर रहते हैं। इसके अलावा जब हम एक दूसरे से बातें करते हैं तो एक दूसरे को देख भी सकते हैं।
नंबर 8 सी।
मैं एक तालिबे इल्म हूँ और इंटरनेट बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ। दिन रात कई घंटे दूसरे लोगों के साथ बातचीत करने में गुजार देता हूँ, जिसकी वजह से मेरी तालीम मुतासिर होती है।
नंबर 8 सी।
मैं एक तालिबे इल्म हूँ और इंटरनेट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। दिन रात कई घंटे दूसरे लोगों के साथ बातचीत करने में गुजार देता हूँ, जिसकी वजह से मेरी तालीम मुतासिर होती है।
नंबर 8 डी।
मैं पिछले हफ्ते एक शादी की तकरीब में गई थी। कुछ लोगों ने उसकी वीडियो बनाई और इंटरनेट पर डाल दी। जब मैंने ये वीडियो देखी तो मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। मुझे उम्मीद है कि मेरे ख़ानदान वालों ने ये वीडियो नहीं देखी होगी।
नंबर 8 डी।
میں پچھلے ہفتے ایک شادی کی تقریب میں گئی تھی۔ کچھ لوگوں نے اس کی ویڈیو بنائی اور انٹرنیٹ پر ڈال دی۔ جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی تو مجھے بہت شرمندگی ہوئی۔ مجھے امید ہے کہ میرے خاندان والوں نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی۔
نمبر 9 اے،
فیس بک اگرچہ بہت مقبول ہے لیکن اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی گھریلو زندگی متاثر ہو رہی ہے۔ شادی شدہ جوڑوں میں نہ صرف علیحدگی بلکہ بہت زیادہ طلاق کے واقعات بھی ہو رہے ہیں۔
نمبر 9 اے،
فیس بک اگرچہ بہت مقبول ہے لیکن اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی گھریلو زندگی متاثر ہو رہی ہے۔ شادی شدہ جوڑوں میں نہ صرف علیحدگی بلکہ بہت زیادہ طلاق کے واقعات بھی ہو رہے ہیں۔
نمبر 9 بی،
تیسری دنیا میں تعلیمی سہولتیں ناکافی ہونے کے علاوہ بے روزگاری بڑھ رہی ہے، لیکن ان کا سب سے بڑا مسئلہ آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہے، جس کی وجہ سے تیسری دنیا کے ممالک کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے۔
نمبر 9 بی،
تیسری دنیا میں تعلیمی سہولتیں ناکافی ہونے کے علاوہ بے روزگاری بڑھ رہی ہے، لیکن ان کا سب سے بڑا مسئلہ آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہے، جس کی وجہ سے تیسری دنیا کے ممالک کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے۔
نمبر 9 سی،
غریب ممالک میں صاف پانی کی دستیابی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے بچوں، نوجوانوں اور بوڑھوں کی صحت پر برا اثر پڑ رہا ہے۔ آلودہ پانی پینے کی وجہ سے لوگ بہت سی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔
نمبر 9 سی،
غریب ممالک میں صاف پانی کی دستیابی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے بچوں، نوجوانوں اور بوڑھوں کی صحت پر برا اثر پڑ رہا ہے۔ آلودہ پانی پینے کی وجہ سے لوگ بہت سی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔
نمبر 9 ڈی،
آج کل کے نوجوان اپنا زیادہ تر وقت انٹرنیٹ، موبائل فون اور کمپیوٹر پر گزارتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ غیر صحت مندانہ طرز زندگی کے عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے कि उनमें मोटापा बढ़ रहा है, जो कि हर बीमारी की जड़ है।
नंबर 9 डी,
आजकल के नौजवान अपना ज्यादातर वक्त इंटरनेट, मोबाइल फोन और कंप्यूटर पर गुजारते हैं, जिसकी वजह से वो गैर सेहतमंदाना तर्ज जिंदगी के आदि होते जा रहे हैं। यही वजह है कि उनमें मोटापा बढ़ रहा है, जो कि हर बीमारी की जड़ है।
Example.
गाड़ियों और फैक्ट्रियों का धुआं तेजाबी बारिशों का बायस बन रहा है, जो इमारतों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है।
एग्जाम्पल,
गाड़ियों और फैक्ट्रियों का धुआं तेजाबी बारिशों का बायस बन रहा है, जो इमारतों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है।
नंबर 10 ए,
एक रिपोर्ट के मुताबिक तरक्की याफ्ता ममालिक के शहरी माहौलियाती मसाइल में कम दिलचस्पी लेते हैं, जिसकी वजह से आलूदगी में इजाफा हो रहा है।
नंबर 10 ए,
एक रिपोर्ट के मुताबिक तरक्की याफ्ता ममालिक के शहरी माहौलियाती मसाइल में कम दिलचस्पी लेते हैं, जिसकी वजह से आलूदगी में इजाफा हो रहा है।
नंबर 10 बी,
पाकिस्तान में समुंदर के करीबी इलाकों में पानी की सतह बुलंद हो रही है और बाज़ इलाकों में पानी तकरीबन 50 किलोमीटर अंदर आ चुका है, जिसकी वजह से फसलों की पैदावार दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही है।
नंबर 10 बी,
पाकिस्तान में समुंदर के करीबी इलाकों में पानी की सतह बुलंद हो रही है और बाज़ इलाकों में पानी तकरीबन 50 किलोमीटर अंदर आ चुका है, जिसकी वजह से फसलों की पैदावार दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही है।
Number 10. C.
دنیا میں بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جنگلات کو کاٹ کر اس جگہ کو مکانات اور دوسرے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے درجہ حرارت بھی بڑھ رہا ہے۔
Number 10. C.
دنیا میں بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جنگلات کو کاٹ کر اس جگہ کو مکانات اور دوسرے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے درجہ حرارت بھی بڑھ رہا ہے۔
Number 10. D.
فضائی آلودگی کی وجہ سے بہت زیادہ بے موسم بارشیں ہو رہی ہیں، جن کی وجہ سے دنیا بھر میں سیلاب آ رہے ہیں جو انسانی بستیوں کو تباہ کر رہے ہیں۔
Number 10. D.
فضائی آلودگی کی وجہ سے بہت زیادہ بے موسم بارشیں ہو رہی ہیں، جن کی وجہ سے دنیا بھر میں سیلاب آ رہے ہیں جو انسانی بستیوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ Number 11. Part 1.
آپ کی چھٹیاں کیسی رہیں؟
میں اپنے خاندان کے ساتھ ترکی کے تاریخی شہر استنبول گئی تھی۔ اس سے پہلے میں سعودی عرب میں عمرے کی ادائیگی کے لیے اور پاکستان میں اپنی بیمار دادی سے ملنے کے لیے جا چکی ہوں۔
آپ وہاں کہاں ٹھہری تھیں؟
ہم ایک ہوٹل میں ٹھہرے تھے۔ اس ہوٹل کا عملہ تو بہت اچھا تھا، لیکن ہوٹل کی سیڑھیاں کافی ٹیڑھی تھیں، جن پر چڑھتے ہوئے میرا چھوٹا بھائی گر کر بری طرح زخمی ہو گیا تھا۔
آپ نے ترکی میں کیا کیا دیکھا؟
شہر کی مشہور تاریخی عمارتیں جیسا کہ بلو مسجد، اور تاریخی محل دیکھا جو اب اسلامی تاریخ کا عظیم الشان عجائب گھر ہے۔ یہ سب مقامات ہوٹل سے اتنے قریب تھے کہ ہم نے پیدل جا کر ان سب قابل دید جگہوں کی سیر کی۔ ان عالیشان عمارتوں کو دیکھ کر انہیں تعمیر کرنے والے بادشاہوں کو بے ساختہ داد دینا پڑی جو انہوں نے صدیوں پہلے تعمیر کروائی تھیں۔
نمبر 11 پارٹ 1۔
آپ کی چھٹیاں کیسی رہیں؟
میں اپنے خاندان کے ساتھ ترکی کے تاریخی شہر استنبول گئی تھی۔ اس سے پہلے میں سعودی عرب میں عمرے کی ادائیگی کے لیے اور پاکستان میں اپنی بیمار دادی سے ملنے کے لیے جا چکی ہوں۔
آپ وہاں کہاں ٹھہری تھیں؟
ہم ایک ہوٹل میں ٹھہرے تھے۔ اس ہوٹل کا عملہ تو بہت اچھا تھا، لیکن ہوٹل کی سیڑھیاں کافی ٹیڑھی تھیں، جن پر چڑھتے ہوئے میرا چھوٹا بھائی گر کر بری طرح زخمی ہو گیا تھا۔
آپ نے ترکی میں کیا کیا دیکھا؟
شہر کی مشہور تاریخی عمارتیں جیسا کہ بلو مسجد، اور تاریخی محل دیکھا جو اب اسلامی تاریخ کا عظیم الشان عجائب گھر ہے۔ یہ سب مقامات ہوٹل سے اتنے قریب تھے کہ ہم نے پیدل جا کر ان سب قابل دید جگہوں کی سیر کی۔ ان عالیشان عمارتوں کو دیکھ کر انہیں تعمیر کرنے والے بادشاہوں کو بے ساختہ داد دینا پڑی جو انہوں نے صدیوں پہلے تعمیر کروائی تھیں۔
نمبر 11 پارٹ 2۔
وہاں کا ماحول کیسا لگا؟
وہاں بہت رونق تھی۔ جس طرف نظر اٹھا کر دیکھو سیاحوں کا ہجوم نظر آتا تھا، کیونکہ جولائی اور اگست کے مہینے ترکی میں سیاحت کے لیے مشہور ہیں۔
پھر تو آپ نے خوب خریداری کی ہوگی۔
استنبول چونکہ سیر و سیاحت کا مرکز ہے، اس لیے بہت ہی مہنگا ہے۔ یہاں کے دکاندار بھی سیاحوں کی لا علمی سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کے ساتھ خوب سودے بازی کی جائے۔ دیکھا جائے تو میرے خیال میں سیاحت ترکی کی معاشی حالت کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔
نمبر 11 پارٹ 2۔
وہاں کا ماحول کیسا لگا؟
وہاں بہت رونق تھی۔ جس طرف نظر اٹھا کر دیکھو سیاحوں کا ہجوم نظر آتا تھا، کیونکہ جولائی اور اگست کے مہینے ترکی میں سیاحت کے لیے مشہور ہیں۔
پھر تو آپ نے خوب خریداری کی ہوگی۔
استنبول چونکہ سیر و سیاحت کا مرکز ہے اس لیے بہت ہی مہنگا ہے۔ یہاں کے دکاندار بھی سیاحوں کی لا علمی سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کے ساتھ خوب سودے بازی کی جائے۔ دیکھا جائے تو میرے خیال میں سیاحت ترکی کی معاشی حالت کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔
End of test.